हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए पूरी श्रद्धा भाव प्रेम के साथ बुद्धि से समस्त भौतिक विचारों का परित्याग करके और मन को एकाग्र करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादं सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सूतदेवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण ने हमें शुरू के 3 श्लोकों में दैवी प्रकृति यानी दैवी गुणों के क्वालिटी ऑफ देवी प्रकृति के विषय में बताया कि उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। और भगवान ने बताया सबसे सब पर दया करना, लालच न करना, लज्जा, संकल्प, निर्भयता, पवित्रता, ज्ञान, दान, दम, यज्ञ, ब्रह्मचर्य पालन, तपस्या, सादा जिंदगी गुजारना, जुल्म ना करना, सत्य और गुस्सा ना करना, शांति, दूसरों की गलतियों को ना देखना, अथवा ये सब दैवी गुण हैं। और दैवी गुण दैवीय प्रकृति के लोगों में होते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हमें असुरी गुण बताए कि चौथे से लेकर भगवान श्री कृष्ण ने असुरी गुण बताना शुरू किए। और बाद में ये भी बताया पांचवें श्लोक में कि अगर आप दैवी गुण विकसित करोगे तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, और अगर आपके अंदर असुरी गुण होंगे तो आप बंधन में फंस जाओगे, फिर आपके मोक्ष का कोई चांस नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने बताया हमें कि 2 प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में, एक दैवी प्रकृति वाले होते हैं और एक आसुरी प्रकृति वाले होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 18 तक हमें असुरी गुणों के विषय में डिटेल से बताया। क्यों बताया? क्योंकि भगवान हमें बचाना चाहते थे, क्योंकि शास्त्र में लिखा होगा और हम उसी को पढ़ के ही हमें पता चलेगा ना कि हमारे अंदर दैवी गुण है या नहीं। शास्त्र या सिद्धांत जो है वो इसलिए है ताकि हम अपने ऊपर उसको लागू करके देखें, अपने को जज करके देखें कि कहीं हम इस तरह के तो कार्य नहीं कर रहे हैं जो भगवान ने आसुरी गुण बोले हैं, कहीं इस तरह भगवान ने डिटेल से भी बताया। और आगे तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बताया कि तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यज्जस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईशार होते हैं, क्रूर होते हैं, नराधम होते हैं, वो निरंतर आसुरी गुणों, आसुरी योनियों में चले जाते हैं। यानी जो आसुरी गुण अपने अंदर आसुरी प्रकृति विकसित करते हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने 16.20 में हमें बताया, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति जो आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंचते, यानी भगवान साफ साफ बताना चाहते हैं कि जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं उन्हें मैं आसुरी योनियों में बार बार धकेलता रहता हूँ, बार बार उन्हें अपवित्र योनियों में, जानवरों की योनियों में डालता रहता हूँ और वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति में पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें सावधान करने के लिए पूरा चैप्टर में सब कुछ बता रहे थे। और आगे 21 में बताया, त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभः तस्मादेतम त्रयम् त्यजेत्। नरक में जाने के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, तो कृपा करके आप बुद्धिमान बनो और इन तीनों का परित्याग कर दो। भगवान श्री कृष्ण 22 में कहने लगे कि एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिविर्नरः आचारत यात्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम्। जो व्यक्ति इन तीन नरक द्वारों से बच पाता है वही ही आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और क्रमशः और परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन जो इन सारी बातों को स्वीकार नहीं करता, इन सारी बातों को जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, उनको एक्सेप्ट नहीं करता है और अपने मन माने ढंग से कार्य करता है। श्लोक को, चैप्टर नंबर 16, टेक्स्ट नंबर 23 को हमने बहुत ही डिटेल से बताने का प्रयास किया। भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्द कहे, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम् न परम गतिम्। जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, न सुख और ना ही परम गति प्राप्त हो सकती है। और भगवान श्री कृष्ण ने हमें कल भागवतम से हमने ये बताने का प्रयास किया कि शास्त्र की विधि विधानों के जरिए से हमें किस तरह से, हाउ टू यूज दिस ह्यूमन बर्थ, हमें ये मनुष्य जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है वो शास्त्र में लिखा हुआ है। और आज भगवान श्री कृष्ण 16.24 में हमें कहते हैं, भगवान कहते हैं, तस्माच्छात्रम् प्रमाणंति कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुम् इहार्हसि तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणंति। तस्मात् मतलब इसलिए, इसलिए तो किस लिए, इसलिए क्योंकि शास्त्र के विधि को अगर नहीं जानेंगे, अपने मन माने ढंग से कार्य करेंगे, फिर तो न सुख मिलेगा न परम पद मिलेगा और न ही सिद्धि मिलेगी। इसलिए क्या करना चाहिए, शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र मतलब शास्त्रों के प्रमाण ते, यानी तुम्हारा कार्य अकार्य, कार्य कार्य व्यवस्थित, जो भी शास्त्रों में बताया गया है कि ये कार्य करने हैं आपके लिए, यह कर्तव्य है, अकार्य मतलब ये कार्य नहीं करने हैं, ये कर्म है, ये विकर्म है, शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है। और आगे बताया, ज्ञात्वा, आपको जानना चाहिए, बगैर शास्त्रों को जाने आपको कार्य नहीं करने चाहिए, वरना तो आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, कभी परम गति नहीं मिलेगी। इसलिए आपको शास्त्र को जानना चाहिए कि उसमें क्या करने के लिए लिखा हुआ है और क्या नहीं करना ये लिखा हुआ है। ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम, शास्त्र मतलब शास्त्र का विधान, उक्तम यानी जो शास्त्र में कहा गया है, उन सारे विधि विधानों को आपको जानना चाहिए। और आगे कर्म कर्तुम, कर्म मतलब काम, कर्तुम करना चाहिए। इहारहसि इस संसार में, इह मतलब इस संसार में, अरहसि यानी तुम है। भगवान श्री कृष्ण आज हमें शास्त्र को पढ़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि जब आप मनुष्य बने हो तो आप अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते, आपको शास्त्र को जानना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणम् ते, इसलिए आपको शास्त्र को जान, भगवान कहते हैं अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर ही कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्मश ऊपर उठ सके। यानी कि अब देखो हमने पहले ही पढ़ा 14.18 में कि अगर आपको ऊपर जाना है तो सत्वगुण में कार्य करने, अगर नीचे जाना है तो तमोगुण में कार्य करने, अगर रजोगुण में कार्य करोगे तो सेंटर में रहोगे। तो अगर हम सब जाना चाहते हैं ऊपर, कोई चाहता है कि हम लोग बारंबार इस पर वर्ग वाली जिंदगी को गुजारें, बारंबार दुख क्लेश को प्राप्त करें, परिश्रम वाली जिंदगी को गुजारें, या नीचे नरक लोक में जाएं? नहीं ना, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी अधोगति, अपने आप को, अपनी आत्मा को अधोगति से बचाएं और भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो उसको प्राप्त करने का तरीका जो शास्त्र में लिखा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और आज भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक बताया उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें मुक्ति का मार्ग बताएंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। कब कहा? 15.15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे न चाहम। अर्थात भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निस्संदेह वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। भगवान ने वेदों को बनाया है, भगवान वेदों को जानते हैं, भगवान ही वेदों के जरिए जानने वाले हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं क्योंकि पहले से ही बताया जा चुका है कि वेदों को जानने का मकसद है कृष्ण को जानना, और वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवद्गीता से कृष्ण को जान लेता है, अब कृष्ण बाकी सारे वेदों में क्या, वेदों का मकसद क्या है? वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, मुझे जानना है कृष्ण कहते हैं। तो यदि खाली भगवद्गीता पढ़कर ही आप कृष्ण को जान लेते हो और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुँच जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? अहमेव वेद्यो, मुझे जानना है। और अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण को जान लेता है, कृष्ण के सरेंडर हो जाता है तो वेदों की परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत ही सरल बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला बहुत ही सुगम है, उन्होंने लोगों को केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अब जब और यह महामंत्र को जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अच्छा विग्रह को अर्पित भोज का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा है। बस आपको क्या करना है? वही खाना है जो भगवान को अर्पण किया गया हो, और सदैव भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र, इस महामंत्र का उच्चारण करके भगवान से सेवा की याचना करनी है। क्योंकि यह महामंत्र अभिन्नत्वा नाम नामिनो, ये महामंत्र वह सब तुम्हारे सामने क्लियर कर देगा। वो सब बता देगा जो वेदों का ज्ञान, भगवान ने कहा अहमेव वेद्यो, मैं वेद हूँ और मंत्र ही भगवान है, तो भगवान आपको सब कुछ बता देगा। भगवान साफ साफ कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये नमाम उपयान्तिते। आपको भगवान ने निचोर बताया, श्रीमद भगवद गीता सार है, और भगवान ने कहा कि आपको वेद जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है, कंटिन्यूस मेरे नाम का स्मरण करना है, मैं बुद्धि दे दूंगा, वेद समझ में आ जाएगा। क्यों समझना है वेद को? और ये इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्योंकि अगर हम वेद को नहीं समझेंगे, अपने मन माने ढंग से कार्य करेंगे, तब तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और वेद को समझने का आसान तरीका क्या है? भगवान के नाम का जप करना। और इसी विधि को चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि आपको कंटिन्यूस भगवान के नाम का जप करना है और भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद अर्पण करना है। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाना चाहिए। जो ये कार्य करता है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि वेदों को जानने का मकसद क्या है? अहमेव वेद्यो, कृष्ण बोलता है मुझे जानना है और मुझे सरेंडर करना है। तो जब ये कार्य कर रहा है तो समझो कि उसे सार तत्व प्राप्त हो गया, वेदों का सब कुछ उसे समझ में आ गया। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेश अनुसार किया जाना चाहिए। यानी कि जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको भले वो जाके देखे वेदों में क्या लिखा हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उलझते रहेंगे। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए, इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी वेदों में लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, कल वाला श्लोक अगर कंटिन्यू करें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, धर्म से ही अपवर्ग से, धर्म किस लिए प्राप्त करना है? भगवान को प्राप्त करना। और भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है भगवान के नाम का स्मरण करना। तो यही वेदों का सार है और यही आपके जीवन का लक्ष्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके लिए आपको कोई तर्क नहीं करना चाहिए, जो वेद में लिखा हुआ है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, उसको एज इट इज आपको पालन करना है। और नियमों का पालन करके आप वेदों को पालन कर रहे हो तो इसी को शास्त्र विधि कहते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मा शास्त्र प्रमाणंते, और शास्त्र के प्रमाण के अनुसार ही आपको क्या करना चाहिए, कार्य कार्य व्यवस्थित हो, उसी तरह तदनुसार ही आपको कार्य करना चाहिए। अब आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं कि शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते, यानी कि शास्त्र जो है वो किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, स्वयं भगवान के शक्ति आवेश अवतार वेद व्यास जी ने लिखे हैं। तो उसमें चार मुख्य दोष नहीं। अब इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर चार मुख्य दोष होते हैं, क्या? क्योंकि वो ये अपरा प्रकृति से बने हुए हैं, उसके लिए उनके अंदर चार दोष होते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं। क्या है? अपूर्ण इंद्रिय, उनकी इंद्रियां इनकम्प्लीट हैं, वो सही निर्णय नहीं कर सकते। इंद्रियां इतनी इनकम्प्लीट हैं कि आप सारी जिंदगी जिसको यूज करते हैं उस हवा को नहीं देख सकते, कीटाणु को नहीं देख सकते, अपने आप को नहीं समझ सकते, अंधेरे में अपने हाथ को नहीं देख सकते, तो भला भगवान को क्या समझ सकते हैं? तो इंद्रियां अपूर्ण है। कपटता यानी छल, धोखा देने की प्रवृत्ति है। त्रुटि करना, कितना ही ज्यादा तीव्र तीक्ष्ण उसकी बुद्धि हो लेकिन गलतियां कर लेता है मनुष्य, तथा मोहग्रस्त होना, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये चार प्रकार के दोष प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये चारों शास्त्र में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा शब्द प्रमाण पर ही विश्वास करना चाहिए। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य है। तो जो वेद में लिखा हुआ है वही सही विधि विधान है, सही नियम है। मनुष्य जो आज नियम बना रहा है क्योंकि वो उसकी इंद्रियां इनकम्प्लीट है, मोहग्रस्त है, कपटता है, त्रुटि है, तो वो तो सही नियम नहीं बना सकता। अतएव विधि विधान जानना जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, उन जो इन दोषों से परे हैं, कभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। क्योंकि शास्त्र जो होते हैं वो बड़े बड़े महात्मा, आचार्य, महापुरुष सब उनको एज इट इज स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं होता, वो एज इट इज स्वीकार करने के लिए होते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं आध्यात्मिक विद्या की। उसमें क्या होता है जिन्हें प्रायः दो श्रेणियों में रखा जाता है। ज्यादातर दो श्रेणियां हैं, निराकारवादी तथा साकारवादी। कुछ भगवान को निराकार यानी भगवान का कोई रूप रंग नहीं है उस ऐसा समझते हैं, और कुछ साकार के भगवान साकार हैं। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। वो भी शास्त्र प्रमाण देते हैं जो निराकारवादी होते हैं, और जो साकारवादी होते हैं वो भी शास्त्र के अनुसार ही अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को ब्रह्म भी है, निराकार भी है, साकार भी है, तो शास्त्र के अनुसार ही दोनों नियम पालन कर रहे हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम शास्त्र को पालन कर रहे हैं और हम शास्त्र के अनुसार ही जीवन बिता रहे हैं, तो फिर भले वो ऐसा मान रहे हैं, लेकिन अगर वो निराकार समझ रहे हैं भगवान को, तो फिर अब ये तो उनका भाग्य है। क्योंकि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, भगवान ने जो कहा है कि मैं ही निराकार ब्रह्म का स्रोत हूँ, मुझसे आया है, जो इस तरह के अगर निराकार भी भगवान की ज्योति है इस तरह से समझता है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वह भाग्यशाली माना जाना चाहिए, उसको भाग्यशाली हम मानते हैं। आगे बोलते हैं, मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। अगर कोई संसार में बदनसीबी है, पतन है, अगर कोई घोर दुख मिल रहा है, जो आज का संसार, आज का मनुष्य जो पतन की ओर जा रहा है, जो प्रगति नहीं कर पा रहा, समस्त दुखों का कारण अखिल विश्व भगवत भावना की विद्या के ना होने के कारण दुख का बोध हो रहा है, उसको दुख महसूस कर रहा है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। जो भगवान ने शास्त्रों में विधि विधान कहे हैं उनको पालन नहीं कर रहा है तो दुख भोग रहा है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। मानो आप मनुष्य बने हो, शास्त्र आपके लिए लिखे हुए हैं, और यदि आप शास्त्र को नहीं समझ रहे हो, शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रियताप के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने माया बनाई है। जो त्रियताप कौन से होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, दुखों को बारंबार हमें सहना पड़ रहा है। क्यों सहना पड़ रहा है? क्योंकि हम शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते। यदि किया होता तो ऐसी जगह पर आते ही नहीं जहाँ पर ये त्रियताप हमें सहने पड़ते। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनती है। ये जो माया है वो प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार है। इसके पूर्व की भगवान की ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है। यानी कि जब तक आप भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो एटलीस्ट सत्वगुण तक तो आपको आना चाहिए। सत्वगुण में ज्ञान अर्जित करना चाहिए, शास्त्र को अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए। सत्वगुण तक उठे बिना तमोगुण तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। अगर आप सत्वगुण में नहीं विकसित करते हो, ज्ञान अर्जित नहीं करते हो, सत्वगुण का मतलब है आप ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। लेकिन अगर आप सत्वगुण को विकसित नहीं करते हो, रजोगुण और तमोगुण में रहते हो जो आसुरी जीवन के कारण है, और रजोगुण में और तमोगुण में रहकर आप सिर्फ और सिर्फ असुरों जैसे कार्य करोगे, क्योंकि शास्त्र पता ही नहीं है। रजो तथा तमोगुण व्यक्ति शास्त्र, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, आज भी देखो जो संसार में रजोगुणी लोग होते हैं, जो धन कमाने में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, सिर्फ उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि मैं कैसे अपने जीवन को सुखी करूं, और कंटिन्यूस तमोगुण में होते हैं, अपन अज्ञान में होते हैं। तो वो ये जो शास्त्र में लिखा हुआ है ना, हम बताते हैं कि है ना, शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपके जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति है, आपको मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है, तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों की को उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों की कोई परवाह नहीं करते। कोई भी परवाह नहीं होती है उन्हें कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, हमें अपने जीवन में भगवान को किस तरह से प्राप्त करना है, इसके विषय में उनको कोई विचार नहीं होता है। बस कुत्तों और जानवरों की तरह आहार निद्रा भाई मैथुनम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वे मुक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। उनको अगर बोला जाए कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, आप मुक्त नहीं हो सकोगे, तो भी उनको इच्छा ही नहीं होती है। फिर भी वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बस सारा दिन यही काम वासनाओं को पूरा करने के लिए, ये खाऊं वो खाऊं, यहाँ घूमने जाऊं वहां घूमने जाऊं, ये करूं वो करूं, कैसे मैं अपने इस इंद्रिय को, इस गंदगी से भरे हुए शरीर को कैसे खुश करूं, यही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। मुक्ति की तरफ तो उसे कोई आकर्षित होता ही नहीं, उसको वो मुक्त होना चाहता ही नहीं है और उन्हें मुक्ति की तरफ कोई आकर्षण नहीं होता है। वो क्या करते हैं, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस प्रकार अपनी उन्नति का निजी मार्ग बनाते हैं। वो अपना एक अलग रास्ता बना देते हैं जिससे वो उन्नति करना चाहते हैं, जिससे चाहते हैं कि भाई इस रास्ते पर चलूंगा और मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा, मैं सुख प्राप्त करूंगा, मैं परम गति प्राप्त करूंगा। लेकिन भगवान ने तो साफ साफ कह दिया, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम, के सुख और शांति और परम गति तो शास्त्र को पालन किए बगैर प्राप्त हो ही नहीं सकती, लेकिन वो इस बात को मानते ही नहीं है, इसलिए अपने अपने मार्ग बनाते रहते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण असुरी जीवन बिताना पड़ता है और इसके वजह से वो सुख शांति और परम गति तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि बारम्बार आसुरी जीवन में धकेल दिए जाते हैं। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर शास्त्रों के अनुसार आपको कोई परम गुरु, प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर आपका जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाता है। शास्त्र में शास्त्र भगवान ने कहा, यदि आपको भगवान की तरफ उन्नति करनी है, यदि आपको उच्च पद को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्वदर्शन। जो परम ज्ञानी है, जिन्होंने तत्व को देखा है, उनके सरेंडर होकर आपको ये जानना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी निजी जो आपने रास्ता बनाया है, चैप्टर 4.34 भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आपको किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, वही आपको सच्चाई बता सकता है। क्योंकि जिस संसार में आप रहते हो वहां पर तो आप अपनी मर्जी से जो अपना मार्ग बना रहे हो वो तो आपको आसुरी होने की तरफ लेकर जाएगा, इसलिए आपको किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। हमारे इस चैप्टर का मेन जो लक्ष्य है वो यही है कि हमें शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अपना जीवन गुजारना चाहिए, अन्यथा हमें बारंबार जन्म मृत्यु और आसुरी योनि में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत कष्टदायक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय यानी दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवीयासुरी संपदि विभागयोगो नाम षष्ठदशोऽध्यायः। हरि बोल।